उस प्लान को 20 साल का टर्म प्लान बना लिया विदाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि पहले 7 साल में आप उसको चेंज कर सकते,
कन्वर्ट कर सकते,
हाँ, विदाउट एनी हेल्थ क्वेश्चन। तो ऐसा कर लिया, क्योंकि उनकी एज 65 से कम थी, तो 10 वाले को हमने 20 का बना लिया। तो उसका क्या है कि ये टर्म टू टर्म कन्वर्शन भी हो सकता है प्लान का इन सर्टेन केसेस।
416-894-5872 प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, क्या पूरे का पूरा कन्वर्ट करना है मुझे, तो डू आई हैव टू डू द होल, पूरा का पूरा पैसा जो 500,000 का है मेरा या मिलियन डॉलर का है, मुझे पूरा मिलियन डॉलर का पूरा पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा, या आपके लिए कोई और ऑप्शंस भी?
बिल्कुल जरूरी नहीं है माजिद भाई कि पूरा, अगर आपके पास मिलियन डॉलर का प्लान है तो पूरे को चेंज करें, क्योंकि कई बार वो बहुत महंगा हो जाता है। तो आप कर सकते हैं कि भाई मैं मिलियन में से 1.5 लाख के को चेंज करता हूं, बाकी को ऐसे ही छोड़ देता हूं, है ना, क्योंकि मैं उतना ही अफोर्ड कर सकता हूं। या आप कर सकते हैं कि भाई मिलियन डॉलर का मैंने में से 1.5 लाख किया और अब मेरी जरूरत ही कम हो गई है, तो कुछ उसको जो टर्म प्लान है कुछ पोर्शन को हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। मान लिया अब मेरी जरूरत रहेगी 5 लाख की, इनिशियल प्लान था 10 लाख का, आपने 1.5 लाख चेंज किया, 3.5 लाख को आपने कहा कि ऐसी चलने दो जैसे पहले चल रहा था, और 500,000 को कम कर लिया।
सो देयर आर
डिफरेंट ऑप्शंस जो है आपके बजट, आपकी नीड्स और आपकी थिंकिंग के हिसाब से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं।
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, आखिर में कैसे रैप अप?
आखिर में ये कहना चाहूंगा, आपके पास किसी भी कंपनी का प्लान हो, आप उसको रिव्यू कराएं, कोई कॉस्ट नहीं उसकी, और आप डिस्कशन करें, मुझे कॉल करें 416-894-5872, डिस्कशन करें, उसके ऊपर भी आपके ऊपर कोई कॉस्ट या ऑब्लिगेशन नहीं है माजिद भाई, लेकिन इस डिस्कशन से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा जो कि आपको आगे चल के बहुत काम आएगा।
सब प्रदीप जी जब आते हैं ट्यूसडे को यहां पर, तो अपने साथ एक खूबसूरत गीत की भी फरमाइश लेके आते हैं, और आज की गीत की फरमाइश इन्होंने किया है, फिल्म थी एक ज्यूल थीफ, और ज्यूल थीफ देव आनंद से अच्छा कौन हो सकता है, तो देव आनंद जी एंड विजयंती माला जी की फिल्माया गया हुआ ये गीत फिल्म ज्यूल थीफ से आसमां के नीचे। जनाब प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू वेरी मच माजी साहब, अगले ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी, और आप जैसे नौजवानों से बात करके मेरा भी हौसला बढ़ता है, आप जैसे ताजे नौजवान
प्लेजर इज माइन सर। ज्यूल थीफ से ये बहुत खूबसूरत गीत, 416-620-1778 हमारे स्टूडियो का नंबर है।
आसमां के नीचे,
आसमां के नीचे, नॉट बैड, आगे
हम आज अपने पीछे,
हम आज अपने पीछे, फिर
प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
हुजूर, ये गेट है या कवाली?
प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। गैस
आप लपे ही है कव्वाल, भैरवी बिगाएंगे तो आप।
आसमां के नीचे, हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
आसमां के नीचे, हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
चले तो फूल जैसे, हाँ चल के रंग से, सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पहना दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें।
जितना हो चल खुद ही दमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले।
अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले,
पतंग के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी न, आज तुम कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको।
एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो हन के लाल होठों के प्याले।
आत्मा के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले,
कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे, तुमको पुकारे।
कह दो बहारों से आई है उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले।
अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले,
कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले,
कदम के निशान बना के चले।
770 AM Youngstown Toronto 770 AM ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾ ਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਟ ਕੋਮ,
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/culturedays ਤੇ ਜਾਓ।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गार्लिक जी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। यह सब इस लई तो जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जानो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
ब्रैम्पटन अग तो सुरक्षित रहो। 28 सितंबर नू अग सुरक्षा दे एक दिन लई कैसी कैंपबेल कम्युनिटी सेंटर विच सवेरे 10 बजे तो दोपहर 2 बजे तक साडे नाल जुड़ो अते फायर अलार्म दी जांच लई 50,000 वायदे सुरक्षित करने विच साडी मदद करो। फायर डिपार्टमेंट दे स्टाफ नू मिलो, जीवन बचाउण दे सुझाव सिखो अते ऑनलाइन या व्यक्तिगत तौर ते अपना वायदा साडे नाल सांझा करो। ज्यादा जानकारी लई अज ही विजिट करो brampton.ca/savedbythebeat।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
647-769-0241। जिस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और आज नासा की रिपोर्ट ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान भी हैं, मगर बेशतर इसके कि मैं उस प्रोग्राम की तरफ बढ़ूं आज, क्योंकि हम दुनिया की बात करना चाहते हैं। आपको पता है कि 10 में से 6 ऐसी चीजें हैं जिसमें, और ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं और वी आर गोइंग टूवर्ड्स तबाही। सहारा डेजर्ट के बारे में आपको पता ही है। तकरीबन आज से 2500 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो 2500 BC बिफोर द क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल पहले, मॉनसून जो थी वो वहां पे खत्म हुई और ये बड़ा लश ग्रीन एरिया था, बड़े जबरदस्त एरिया था और फिर ये डेजर्ट में चेंज हुआ। अब 2500 साल आप समझ लीजिएगा बिफोर द क्राइस्ट, उसके बाद फिर जीरो आता है और फिर आज हम 14वीं सदी में गुजर रहे हैं और 1300 साल उसके बाद सहारा डेजर्ट हैज रिमेन्ड द सेम ड्राइनेस, और ये 20,000 साल के बाद ये पेंतरा फिर बदलेगा। यहां से मैं आमिर मेरे साथ हैं, बल्कि मैं दिखाना चाहती हूं आज आपको सैटेलाइट के इमेजेस हैं और सहारा डेजर्ट के बारे में अगर आप देखें तो सहारा डेजर्ट का मॉनसून जो रेन्स हैं जिनकी वजह से इसका बिल्कुल फ्लोरा एंड फाना जो है वो चेंज हुआ है। ये सिर्फ घास फूस नहीं है बल्कि इसमें ट्रीज एंड श्रब्स भी मौजूद हैं। ये एक तूफान आया है यहाँ पे, एक बारिश आई है, जिसके बाद बिल्कुल ये सैटेलाइट की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ जो जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं।
दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज अ मिरेकल।
इट्स अ मिरेकल। और देखिए माजिद भाई, आज जब हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं ये पता नहीं रेत और चटियल मैदान था। ये रेत भी कैसे हुई कि फिर उसके बाद जाहिर है इरोजन, जमीन का इरोजन हवाओं की वजह से होता चला गया और वो रेत के जर्रे अब आपको नजर आते हैं। But this is, these are all satellite image, और ये नासा ने बाकायदा इश्यू किए हैं कि जो सहारा है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। यहां से मैं आपको अमेरिका लेके जाना चाहती हूँ और अमेरिका में आज एक शदीद तूफान की जद पे है। उस तूफान के बारे में अनाउंस भी कर दिया गया है।
फ्लोरिडा
का ये तूफान है, अनयूजुअल शिफ्ट तो आपके साथ शेयर कर ही ली। जो तूफान है ये फ्लोरिडा का तूफान है, आप उसके बारे में भी बता दीजिएगा। शदीद बारिशें होंगी और वो कहते हैं इवैक्यूएशन बिगिन इन फ्लोरिडा एज द स्टेट फेसेस अ मेजर हरिकेन स्ट्राइक फ्रॉम हायला। मैं मर जावा, सिर्फ फ्लोरिडा में है तो ये सारे के सारे दुनिया के पॉलिटिशियन कहां इकट्ठे होकर बैठे हुए?
न्यूयॉर्क में,
ये न्यूयॉर्क,
ये सारे न्यूयॉर्क में है।
तो तूफान न्यूयॉर्क में नहीं आ रहा?
नहीं नहीं, ये न्यूयॉर्क में है। ये
क्या पता कोई टोर्नेडो आ जाए?
नहीं नहीं, ये न्यूयॉर्क आलम
कोई फनल आ सकती है?
आ तो हर जगह सकती है, टोरंटो में भी आ सकती है, मगर कोई इम्कान नहीं है उसका।
अच्छा।
और अकॉर्डिंग टू महकमा मौसमियात वो न्यूयॉर्क एंड टोरंटो में कोई जगह नहीं है उसकी।
हाँ।
मगर ये जरूर है कि ये जो तूफान आ रहा है जो आके हिट करेगा फ्लोरिडा को, दैट इज वेरी डेंजरस।
आपको वो कैटरीना तो याद ही है, मगर उन्होंने जो मेट्रियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसका पाथवे दे दिया है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। इस वक्त हम मुलाकात करेंगे आज दुनिया के हालात के बारे में ही हम जिक्र करेंगे। हम में से हर इंसान अपने अपने मखमसे में फंसा हुआ है। जो गाने गा रहा है वो गाने गाई जा रहा है, जो खाना पका रहा है वो खाना पकाई जा रहा है, मगर ये दुनिया ग्लोबल विलेज होने के बावजूद हम दुखों में महसूस नहीं कर पा रहे। आज किसी की बारी है, कल हमारी बारी है। और अगर मैं तारीख का मुतालिया करूं तो तारीख में कभी से आप आ जाएं कि बादशाहत कभी एक जगह टिक के नहीं रहती, ये अपने पैंतरे बदलती चली जाती है। बेशुमार जमाने आए जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी बादशाहत की। आज सल्तनतें बदली, जो इंटरनेशनल पावर्स ने अपना रुख बदला। एक जमाना था कि बरतानिया से ही सूरज तलू होता था और बरतानिया में सूरज गरूब हो जाया करता था। आज आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लें तो उन मुल्कों में जंगें नहीं होंगी, वो लोग जो रूल कर रहे हैं वो प्रॉक्सी वॉर्स करेंगे, यानी जमीन और घास कहीं और की फिसेगी। मगर ये किसका कसूर है? उन लोगों का कसूर है जो मोहरे बनते हैं। आज लिबनान में जो हो रहा है, यकीनन हर दिल खून के आंसू, हर इंसान जिसका दिल है और जिसपे एहसास है वो खून के आंसू रो रहा है। जनाब अशर अजीम मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
Assalamu alaikum Arfa ji, thank you so much for having me on the show and thank you to your viewers and aapne badi dukhti
sab ab mausam kharab hai, sahara apne aap ko badal raha hai, taadi awaaz kyon band ho gayi?
Meri awaaz nahi aa rahi? Hai hello,
आ रही आवाज आ रही है। माजी जमाल साहब का कसूर है?
नहीं, माजी जमाल का कसूर हो ही नहीं सकता है।
अजी अशर भाई आप बात कीजिए।
पहले तो माजिद भाई सलाम अलैकुम, आप हमें लिफ्ट नहीं कराते, आपको पता है, और बस चले क्या करें अब आप बड़े आदमी
हैं। ये रिजीम, पाकिस्तान की रिजीम चेंज वालों में इनका भी हाथ है। इनके अबाजी भी फौजी हुआ करते थे। अच्छा अशर अजीम साहब, आज इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे लीडर्स, तकरीबन 3 या 4 लीडर्स को मैंने भी सुना, अंतोनियो ग्रीस जो है उन्होंने भी गजा का भी जिक्र किया, मगर आज लबनान की भी ईंट से ईंट बजा दी गई। دوسرا دن تھا جس میں سٹرائک کیا گیا, عمارتیں گریں, بچوں کی ڈیتھس ہوئیں. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا کے لیڈرز ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں, بے حسی کس حد تک پہنچ گئی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے آپ؟
کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب فوت ہو گئے اور وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ جی میں ابھی آیا ہوں تو میں جنت میں جانا چاہوں گا. تو اس کو جو آگے سے جواب یہ ملا کہ کیا مطلب بھائی, ابھی تو تم جنت سے آ رہے ہو, میں نے تو تمہیں جنت میں بھیجا تھا, اتنی زبردست تمہیں پودے, ہوا, درخت, ہر چیز دی تھی, تو تم تو ابھی جنت سے آ رہے ہو, کیا مطلب تم نے جنت میں جانا. سو بات یہ ہے جی کہ انسان کو ہمیں جنت ہی دی گئی تھی اور ہر چیز فری تھی اور ہم ہنٹر گیدرر تھے, ہمیں محنت کر کے کچھ کمانا, کھانا, کسی کو کرایہ دینا, اپنی کھولی کا بھاڑا دینا, یہ ہمارے لیے نہیں تھا. ہم نے تو بھیجا کیا تھا کہ بھائی آپ جائیں دنیا. یہ ہم نے پھر سب سے پہلی جب بڑی وہ آئی, جب ہم نے زمین کو پرائیویٹائز کر دیا اور ایگریکلچرل ایج آئی تو ہم نے زمین کو پرائیویٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جی اب کوئی بھی شخص درختوں پہ, میری ایک چھوٹی سی پراپرٹی ہے تو وہاں پہ ایپل کے ٹریز ایسے خود بخود لگے ہیں, آپ کو پتا ہے وائلڈ ایپلز کینیڈا میں اگ رہے ہوتے ہیں اور ہرن آ کے ادھر کھا رہے ہوتے ہیں. وہ وائلڈ ایپلز کریئیٹر نے میرے لیے نہیں لگائے تھے, وہ تمام جو اس دنیا پہ بستے ہیں زیرو جاندار ان سب کے لیے لگائے تھے. وہ پھر میں نے جا کے وہاں پہ ایک فینس اور باڑ لگا دی نا, اور میں نے کہا کہ نہیں یہ ایپل صرف اب میں کھاؤں گا, کوئی اور نہیں کھائے گا. سو ہم نے وہ پرائیویٹائز کر دیا, مینز آف پروڈکشن. جب لینڈ پرائیویٹائز کیا تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ لوگ اگا سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے. میکنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ جی, پھر ہم نے جو لوگ ہنٹنگ کے لیے اسپیئرز اور تلوار یا جو بھی چھوٹا موٹا تیر کمان جو انہوں نے ٹولز انوینٹ کیے تھے شکار کرنے کے لیے, ہم نے وہ ان سے لے لیے کہ جی اسلحہ جو ہے نا, یہ جو ویپن ہے یہ صرف سرکار کے بادشاہ کے آدمی کے پاس ہوگا. بادشاہ جو تھا اس نے زمین ساری ٹیک اوور کر لی فورس سے, ظلم سے, اور ہمارے مینز آف پروڈکشن, ہمارا ہنٹ کرنے کے مینز ہم سے لے لیے گئے. ہمیں کہا یہ گیا کہ تم مجھے سرو کرو گے تو کھاؤ گے. پھر جب آپ کی انڈسٹری لے جائی تو آپ یہ دیکھیں کہ جی اس سے زیادہ برا ہوا انسانیت کے ساتھ. انڈسٹری کا تو مقصد یہ تھا کہ جی جو ریپیٹیٹو ٹاسکس ہیں وہ مشینز کریں گی تو انسان کو تھوڑی سی فراغت ملے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ 100 سال کاؤنٹ کریں 1900 سے 2000 تک کے, پرابلی دا بلڈیسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری. دو جنگیں عظیم جو ہم نے لڑی, جو قتل و غارت اور خون انسانیت کا پچھلے 100 سال میں بہا, میرا خیال کبھی نہیں بہا. جو رچ اور پور کے درمیان گیپ ہے, اب آپ 2000 سے شروع کر لیں اور 2100 تک اللہ خیر کرے اگر ہم پہنچ گئے تھے, تو آپ ساری دنیا ہر طرف ایک عجیب طوفان بدتمیزی میں. آپ نے رپورٹ پڑھ رہی ہوں گی کہ جی کینیڈینز 25% 30% کینیڈین ایسا ہے جو اپنے گھر کی دو ضروری اشیاء مہینے کی اب نہیں خرید سکتا, فوڈ بینک والوں کی بوتھ. سو جو ہیومن گریڈ ہے, جو ہیومن لالچ ہے, اب آپ آ جائیں اسرائیل اور فلسطین کی طرف اور لبنان کی طرف. سو اگر ہم یہ ساری کوئی بات سمجھتے تھے کبھی کہ جی دنیا میں کوئی انسانیت ہوتی ہے, کبھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے یا انسان میں کوئی خوبی ہے, تو ایسی تو کوئی بات تھی نہیں. ہم نے وہ جو ایگریکلچر ایج سے شروع کیا بادشاہ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی اب آپ کی زمین میں نے لے لی, لوگوں نے پوچھا بھائی یہ زمین تیری کیسے ہو گئی, تو کہاں سے لے کے آئے تھے یہ زمین کو, دا پرائیویٹائزیشن آف لینڈ والے کانسیپٹ پہ. تو اس نے کہا کہ یو نو گاڈ گیو اٹ ٹو می, اٹ از مائی ڈیوائن رائٹ. بھائی تجھے گاڈ نے یہ کیسے دے دی؟ اور ظاہر ہے پھر اگر آپ اس بات کو کوشچن کریں گے تو پھر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا, کیونکہ یو نو اٹس اے کنٹرول میکینزم. سو جن چیزوں پہ جو آپ کے ٹرو ماسٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے, بیکاز وہاں پہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو میری ناچیز رائے یہ ہے کہ ہم ایک ایسے جنکچر پہ ہیومن ریس پہنچی ہوئی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگلے 100 سال ہم گزار پائیں گے ایز اے ریس ہر طرف. آپ دنیا میں ہر طرف دیکھ لیجیے, دیکھیں جمہور ومہور یہ سب ایبسلوٹ بکواس ہے, سوائے پاور کے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں.
دیر از نو ڈیموکریسی,
کبھی بھی نہیں تھا جی. دیر از نو ڈیموکریسی. آپ امریکی کانگریس جو ہے وہ ساری کی ساری خریدی ہوئی ہے. وہ پچھلے دنوں وہ شیئر کر رہے تھے نا, کون سی ایک ان کی ویب سائٹ تھی, کہ جی چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں چاہے وہ ریپبلکنز ہیں, جو اسرائیلی لابی ہے وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں سب سے زیادہ.
ناٹ اونلی ڈیموکریٹس ریپبلکنز ایون لبرلز اینڈ کنزرویٹوز میں بی دے رول اینڈ دے آر ویری ویل پلانڈ اینڈ آرگنائزڈ اینڈ دے آر فوکسڈ
جی. تو اور یہ جو ہے نا جی, یہ طاقت ان کے پاس ہے. ظاہر ہے امریکہ کا صدر بھی ان کے بارے میں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اچھا اب یہ کیا حرکت ہے, یہ کیسے یہ ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں وہ, 10 ملین 12 ملین لوگ ہیں ٹوٹل دنیا میں, اور دوسری طرف کتنے ہیں بلینز میں اگر ہم عربز اور مسلمز کی بات کریں,
دنیا کو ملا لیں
کرسچن, ہاں کرسچنز کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی بلینز میں ہیں, لیکن ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے, دونوں کی, نہ کرسچنز کی نہ مسلمز کی مجال نہیں ہے کہ ان کے سامنے ٹور بھی کر سکے. آپ دیکھیں, کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ آج کی دنیا میں 70-80 ہزار لوگ مار دیے گئے, سکولوں کو بام کیا گیا, جو آپ نہیں سوچ سکتی, ہاسپٹلز کو بام کیا گیا, کوئی ہے جس نے جو ہاتھ روکنے کے قابل تھا؟ سو طاقت جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے, دنیا میں واحد ریالٹی طاقت ہے. اب اور اس کی طاقت وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا نا, اتنے کم لوگوں میں وہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے دو فیکٹرز ہیں جو مجھے سمجھ میں آئے, اور اسی لیے وہ میں نے کہا کہ آپ نے بڑی آج دکھتی رگ چھیڑ دی, اس سے مجھے اپنا ہمیشہ وطن عزیز یاد آتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ دو بیسک فیکٹرز کیا ہیں. سب سے پہلی بات ہے آئیڈینٹیٹی. میں آپ کسی اسرائیلی مرد یا عورت سے, چاہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے چاہے امریکہ میں رہتا ہے چاہے یو کے میں رہتا ہے چاہے فرانس میں رہتا ہے چاہے جرمنی میں رہتا ہے, وہ وہاں سے اٹھ کے اسرائیل جاتے ہیں, اپنے 2-2.5 سال اسرائیل کی فوج میں مکمل کرتے ہیں, وہاں پہ وہ جو بھی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس یہاں آتے ہیں. اور آپ اس سے کسی سے ایک بات پوچھ لیجئے کہ آپ کی فرسٹ لائلٹی کس چیز کو ہے, یا آپ کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے, بس سمپل یہ پوچھیں آپ کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا میں امریکی ہوں, میں فرینچ ہوں, میں جرمن ہوں, میں فلانا ہوں. اس کی پہلی لائلٹی اسرائیل. ٹھیک ہے جی, آپ مجھ سے پوچھ لیں آشر صاحب آپ کی کیا لائلٹی ہے, دنیا میں کسی سے پوچھ لیں, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کا اتنا کلیئر آنسر ان تھنکنگ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یار میں کینیڈین ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں پتہ نہیں کیا ہوں. سو وہ کلیئرٹی آف آئیڈینٹیٹی نہیں ہے. سو پہلا پلر آف پاور از دیٹ آئیڈینٹیٹی, دیٹ کمپلیٹ. اچھا, اور وہ آئیڈینٹیٹی کہاں سے آتی ہے؟ وہ آئیڈینٹیٹی دیکھیے مذہب سے نہیں آتی, وہ آئیڈینٹیٹی آپ کی نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ سے نہیں آتی. امریکی کیا ہے؟ امریکی میں ہر قسم کے لوگ. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کی ٹرائبلزم سے آتی ہے. میں میری بات پہ, اور پاکستان میں جیسے ہی آپ کہیں نا ٹرائبل, تو لوگ کہتے ہیں
کان کھڑے ہو جاتے ہیں,
ذکی انوسی انسان ہے یہ, تو جی بہت ہی غلط بات ہے یہ. آپ کے خیال میں آج کا اسرائیل کیا ہے؟ اٹس ٹرائبل. آپ کے خیال میں جو وائٹ سپریمسی ہے وہ کیا ہے؟ اٹس ٹرائبل. یہ اگر آپ میں وہ سینس آف آئیڈینٹیٹی, اپنی لینگویج, اپنا کلچر, اپنا ڈی این اے, اپنا رنگ, اس پہ آپ کو وہ نیشن کا بیسس نہیں ہے نا, تو پھر آپ کا نیشن کا اور کوئی بیسس نہیں ہوگا. سو سب سے پہلی چیز تو آپ کی آئیڈینٹیٹی, یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ میری آئیڈینٹیٹی کیا ہے. اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جی, وہ ٹیکنالوجی ہے. کیونکہ ایک بات ہم طے کر چکے ہیں, پاور کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے, کبھی بھی نہیں تھا, باقی سب ہیر پھیر ہے. دوسرے کی سوچ کو ڈائلیوٹ کرنا ہے, دوسرے کو سبسرویئنٹ کرنا ہے. پورا سکولنگ سسٹم اسی لیے بنا ہوا ہے کہ وہ انڈسٹری کو سرو کرے. دے ول آل ورک فار می, رائٹ, اینڈ دے نیڈ ٹو بی ڈوسائل. دے مسٹ فالو دیز رولز دیٹ ہیو بین میڈ فار دیم, سو ایوری بڈی مووز ان دا پاتھ دیٹ آئی ہیو چوزن فار دیم, رائٹ. सो दूसरी चीज है जी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी बेसिकली आपका इंटेलेक्ट है। अगर मेरे पास बेहतरीन वेपन है तो ये हम क्या करते हैं जी, हम सिर्फ अपने आप को शेर सुनाते हैं। मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही, देखिए हम बहुत सारे थे एक ऐसे
बड़ी कमाल की बात कही। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करती हूँ, मोस्ट ऑफ दी ये जो वेपन्स थे और जर्मन्स के पास तो मोस्टली दे वर ज्यूइश, एंड जितनी आर्टिलरी और ये तमाम चीजें वेपन्स थे इसको डेवलप करने वाले, और अगर आप इस वक्त भी उठा के देखें मेरी बात को बहुत से लोग माइंड करते हैं, आप नोबेल प्राइजेज उठा के देखिए जो ज्यूइश कम्युनिटी ने कितने नोबेल प्राइजेज हासिल किए हैं।
सारी ज्यूइश कम्युनिटी ने बनाया, ठीक है, क्योंकि आपके फिजिक्स में सारे लीडर्स कौन थे, आइंस्टाइन फ्रॉने ये सब कौन थे, राइट। और हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, मैंने वही कहा ना कि जी आपने ऐसी दुखती रग मुझे मेरी छेड़ी। मैं 2018 में दुबई चला गया और फिर 1920-21 वहां पे था, एंड आई वॉज वर्किंग फॉर मेकिंग सम डेवलपिंग सिस्टम्स फॉर देम, और जो चीजें मैं बना रहा था मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि यार ये हम पाकिस्तान में 2005-07 में हम ये बना चुके हुए थे, और अगर हम वो कंटिन्यू करते तो आज हम कहां होते, जो आज दुनिया के लेटेस्ट ममालिक बना रहे हैं वो हम उस वक्त बना रहे चुके थे, राइट। बट हमारे अपने अंदर वो अकल वो जहन ही नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को शेर सुनाते हैं, हम सिर्फ अपने फजूल फजूल बातों में कि जी ये पता नहीं क्या है और इसको मार दो इसको। आप देखें रोज पाकिस्तान का जो फेवरेट मशगला है इस वक्त क्या है, वो लिंचिंग है, मॉब की एक पागलों वाला हजूम है जिसको ना कोई अकल है ना समझ है, ना उसने पढ़ना है, ना किसी उसने यूनिवर्सिटी में जाना है, ना उसने कुछ इन्वेंट करना है, ना उसने इकोनॉमी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है। सो इट्स अ मंकीज एवरीवेयर। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी दुनिया हमसे अच्छी होगी। भैया बाबर जब इंडिया में आया था, मुगल का जब दौर शुरू हुआ था, तो आपके ख्याल में कैसे शुरू हुआ था, बाबर ने कौन सा साल था, 1526 था मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, जब बाबर ने इंडिया पे हमला किया और जीता और मुगल दौर शुरू हुआ, तो बाबर के पास गन पाउडर था, ठीक है, उस वक्त तोप पहली दफा इंडिया ने देखी थी और गन पाउडर पहली दफा इंडिया ने देखा था, और इंडिया के सामने जितनी मर्जी बड़ी फोर्स थी आपकी गन पाउडर के सामने खड़े नहीं हो सकती थी, ठीक है जी। आपका जब बर्तानिया आया तो इंडस्ट्रियल एज थी, वो जो शिप्स लेके आया, वो जो बंदूकें जो 303 राइफल है, दुनिया को किसने कब्जा किया, 303 राइफल ने। हम क्या बना रहे हैं, हमें तो पता नहीं किस तरह एक मौका मिला कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन गए, लेकिन हम तुले हुए हैं इस बात पे कि हम इसको भी जाया कर देंगे। हमने अपने कोई वी हैड अ कंट्री, मैंने ऐसे कहा ना, मैं कुछ 3 साल दुबई में रहा और जिस तरह मैं काम कर रहा था, एंड कोई मैं मुझे होता था यार ये हमारे पास पाकिस्तान में सब कुछ था। अब मतलब अभी मैं आजकल कनेडियन सिस्टम देखता हूं ना, दे स्टिल डोंट हैव दो सिस्टम यूएस के, मैं कंपेरिजन कर सकता हूं, बट वी वर मेकिंग जब प्रेसिडेंट बुश केम टू पाकिस्तान उस दौर में, जब 9/11 के बाद मेरा ख्याल दिस वॉज 2007-08 जब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के प्रॉब्लम हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट बुश आ रहे थे, तो उनकी प्रिपेरेटरी मीटिंग के लिए हमने क्योंकि अमरीकियों ने क्या किया हुआ था कि हर चीज पर स्कैनिंग लगा दी गई थी कि जी पाकिस्तान से जो भी कंटेनर अमेरिका आएगा उसको पहले हम स्कैन करेंगे और उसको हम सब ये करेंगे, और फिर थर्ड कंट्रीज में करते थे तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत महंगी हो रही थी। सो प्रेसिडेंट बुश से एक जो बात करना चाह रहा था, मुल्क को ये करना चाह रहा था कि जनाब एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, और वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आप हमें इंडिकेट कर दिया करें। सो हमारा सिस्टम खुद ही यहां से उठाएगा कि जी आपको इस कंटेनर पे शक है, जो भी है हमारी मशीन्स, वी गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, हम यहां से स्कैनिंग इमेजेस आपको भेज देंगे, आप वहीं पे देख के इंस्टेंट रियल टाइम में हम काम कर रहे होंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट्स डिले भी ना हो, आपने दुनिया के किसी कोने में रोक के उसका सत्यानाश कर देना, कई दिन वो डैमरेजेस पे पड़ी रहेगी, तो हम वो आपने रोकनी तो है, हम ये इंटीग्रेट कर लेते हैं सिस्टम। तो उसमें आई वॉज द वन हु वॉज वर्किंग विद यूएस एम्बेसी प्रिपेयरिंग ऑल दैट, और यूएस की तरफ से वो सारे जो उनके कस्टम्स वाले थे। आप मुझे आज भी वो दिन याद है, वी वर सिटिंग देयर जो हमारा कस्टम हाउस में पैक्स का मीटिंग रूम था एंड दी अमेरिकन एम्बेसडर वाज देयर एंड उसके साथ कस्टम वाले थे, तो मैंने उसको कहा कि जी हम ऐसे करते हैं कि वी कैन डिस्कस, वी कैन डिवाइस अ मैकेनिज्म जिसमें हम अमेरिकन आपके कस्टम्स के साथ अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवा सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द कार्गो जो यूएस के लिए डेस्टिन है. सो जैसे ही हमारी एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन बन रही होगी आपके सर्वर को यूएस में नजर आ जाएगा कि ये कार्गो यूएस के लिए डेस्टिन हो रहा है, अभी पैक हो रहा है, इसका एक्सपोर्टर ये है, आपके यहां इस बंदे को इंपोर्ट किया जा रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है एक्सपोर्टर की, आपके पास आपके इंपोर्टर की हिस्ट्री होगी, आपको जब वो कंटेनर टर्मिनल पर दाखिल होगा आपने क्या सिस्टम हमारे साथ बात करेगा. अच्छा, तो जब मैंने ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन की तो मैंने कहा जी बट आई वुड लाइक के जी ये इट हैज टू बी अ टू वे हैंडशेक. एंड यू नो टू माय सरप्राइज हम समझते हैं ना जी अमेरिका वो बहुत बड़ी चीज है, उनके बड़े अच्छे सिस्टम्स होंगे, उनके यहां लेगेसीज बहुत बड़ी हैं तो सिस्टम्स अच्छे नहीं होते. तो टू माई सरप्राइज द कस्टम्स ऑफिसर सिटिंग देयर जो कि उनकी तरफ से आया हुआ था जो कि इंटीग्रेशन की सारी बात, उसने कहा बट वी आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लीटली, आपकी तरह जिस तरह 100% आप लोग इलेक्ट्रॉनिक हैं इस तरह अभी तक हम हैं नहीं दुनिया में. सो हमारा तो आधे से ज्यादा प्रोसेस पेपर पे और मैन्युअली चल रहा होता है. व्हेन आई वाज सिटिंग एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी मेड दैट प्रेजेंटेशन, मैं कहता हूं दैट वाज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ. 197 मुल्क खड़े होकर डेढ़ मिनट तक सिर्फ खड़े तालियां बजा रहे थे पाकिस्तान के लिए. वी वर एट द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट डिड वी डू टू आवरसेल्व्स. ये जो है ना जी बात, फिर हम दुनिया से गिला करते हैं कि जी हमें मार दिया, हम पे रहम नहीं हुआ, ये कोई इंसानियत है, इंसानी हकूक कहां गए. यार दुनिया में जब जिसके पास पावर थी उसने इंसानी हकूक पे हमेशा लानत भेजी. मुसलमानों के पास जब बहुत पावर थी उन्होंने भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जलाई हैं, जब क्रिश्चियंस चर्च के पास पावर थी उसने दुनिया में अंत मचाई भी थी,
जब मंगोल्स के पास थी उन्होंने भी
पावर थी, उन्होंने खोपड़ियों के मीनार खड़े किए हुए थे. कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हो भाई. यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी. मेरा डीएनए को मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैंने दुनिया में समझदारी से आगे कैसे चलना है, मूवमेंट कैसे करना है.
मैं इन तमाम चीजों को टच में रखना चाहती हूँ. आज मैं आपसे एक और, जब इंटरनेशनल स्केल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आप यूरोपियन यूनियन में आ जाएं. आज ही मैं पहले प्रोग्राम में भी जिक्र कर रही थी कि फ्रांस 24 देखने का मुझे मौका मिला, तो मैं बड़े क्लोजली आई वाज वाचिंग इट, जिसमें फ्रांस ने भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से. ऑल दो द नीड इमिग्रेंट्स, ताकि मनी सर्कुलेट करती रहे. इमिग्रेंट आता है, पैसा भी लेके आता है, और बरतानिया की अगर आप बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात कर लें, अगर आप कनाडा की बात कर लें, अमेरिका की अगर आप बात कर लें, तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है. और जहां तक आप ज्यूइश की बात करते हैं सर, आज हम बात भी कर रहे थे, ये 15वीं 16वीं सदी का ही दौर था. साइप्रस में यहूदियों के ऊपर भी इतनी सख्ती हो गई थी, और फिर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आपने देखी. मैं तो खैर 15वीं सदी में जा रही हूं, कहते हैं यहूदी भी अपने आप को छुपा के चला करते थे, मुसलमान भी अपने आप को छुपा के चला करते होते थे, बल्कि उस वक्त फतवे आ गए थे कि कलमा ना पढ़े, क्योंकि कैथोलिक जो रिलीजन था बड़ा हावी था. आज क्या वजह हुई कि ये सारे के सारे मुल्क जो हैं एकदम से वैरी हो गए हैं इमिग्रेंट्स के. व्हाट मेड थिंग्स डिफरेंट एंड व्हाट इज द नियरेस्ट फ्यूचर फॉर द इमिग्रेंट्स.
मुझे फ्यूचर बहुत डार्क लग रहा है दोनों एस्पेक्ट से. मेरा नहीं ख्याल है कि अगर यही जो चीज चलती रही जैसे आज की दुनिया चल रही है तो भी एज अ ह्यूमन रेस हम अगले 100 साल चल सकेंगे. बिकॉज जिस वर्ज पे हम प्लैनेट को ले आए हैं, हम जिस वर्ज पे जिस रेट पर बाकी लाइफ फॉर्म्स को मार रहे हैं, जिस तरह प्लैनेट को हम हीट कर रहे हैं, जो हमारी ग्रीड हमारा फलाना हमारा सब कुछ है वो जिस तरह अनअबेटेड है, और जिस तरह रिच और पुअर में गैप आ रहा है, आई थिंक वी आर एट अ जंक्चर के, और जिस तरह के हमारे डबल स्टैंडर्ड हैं दुनिया में, तो आई थिंक के जी हम एक बहुत बुरे दौर में हैं. और अगर इसमें फंडामेंटल थॉट में चेंज ना आई तो हम नेक्स्ट 100 ईयर्स आर गोइंग टू बी प्रॉब्ली the end game.
The worst period of time.
जी, अब आप वाली बात पे कि what is happening to the immigrants? So पहले तो पूरी दुनिया एक direction में जा रही है. क्योंकि ज़ाहिर है जब प्लैनेट हीट होगा तो ज़ाहिर है आपके दरियाओं का क्या हालत होगी, आपके ग्लेशियर्स की क्या हालत होगी, किस तरह की फ्लडिंग होगी, मौसम की चेंजेस. अभी आप फ्लोरिडा में हरिकेन की बात कर रहे
हैं. मैं फ्लोरिडा की वहनी के और सहारा डेजर्ट की भी बात कर रही हूँ सर. वहाँ का फ्लोरा फना चेंज हुआ है. श्रब्स, ग्रास, इवन ट्रीज तक सेटेलाइट से नासा ने देखे, उसके इमेजेस भी दिए.
आप अक्टूबर देखें, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है. हम आज क्या 23-24 सितंबर पे बैठे हुए हैं. मुझे याद है जब हम कनाडा नए नए आए थे तो यहाँ पर इस टाइम पर क्या हालत होती थी. रात को एसी चला के सो रहे हैं. दिस इज कनाडा नाउ. तो ये वी आर हेडिंग इन अ वेरी बैड डायरेक्शन. बट नाउ लेट्स कम टू द इमिग्रेंट इशू. सो इमिग्रेशन मजीद जिस तरह, और हम जैसे मैं कल परसों इंटरव्यू देख रहा था पाकिस्तान में, कोई कर रहा था टेलीविजन पे, कोई यूट्यूब पे आ रहा था कि जी 80-90% यंगस्टर्स को जब बात की जा रही थी तो दे वांट टू इमिग्रेट टू अ डिफरेंट कंट्री. ठीक है, दे वांट टू लीव पाकिस्तान. अच्छा जी, अब आप हैं, मैं हूं, हमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? हमें कोई शौक नहीं था. हम भी यही चाहते थे कि जी अगर हमारे मुल्क में सिस्टम्स होते, अगर हम भी डेवलप हो रहे होते, हम तरक्की कर रहे होते, ये बंदरों के हाथ में हमने मुल्क ना दे दिया होता अपनी पॉलिसीज की वजह से, और हम एक फॉरवर्ड थिंकिंग कंट्री होते और हमारे यहाँ कोई लॉ का कोई कानून का कॉन्सेप्ट होता, तो हमने भी रिटायर होके अपने दोस्तों के साथ अपनी उसी गली में जहां पे हमारा घर हुआ करता था, शाम को वॉक पे निकलते अपने कुत्ते के साथ और अपने दोस्तों के साथ गप मारते. हमें क्या तकलीफ थी किसी दूसरे मुल्क आने की. एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स दैट यू ट्राई टू मेक इन टू योर ओन कंट्री के जी लेट्स मेक इट बेटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर अवर सेल्व्स, ताकि हम रहें, बट अनफॉर्चुनेटली जब आपको वो होता नजर नहीं आता तो फिर आप एक दूसरे मुल्क इमिग्रेट करते हैं और लोग इमिग्रेट कर रहे हैं. बट आई एम अफ्रेड के जी जो लोग इमिग्रेट कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत बुरा वक्त आ रहा है, और जो लोग इमिग्रेट फ्यूचर में करना चाहते हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा बुरा वक्त आ रहा है. मेरी नाचीज राय में इसमें दो तीन इश्यूज हैं जो कि होंगे. पहली तो बात यह है कि जब ये इसराइल और गाजा वाला इश्यू शुरू हुआ और सोशल मीडिया अब आ चुका है, तो पहले बहुत अच्छा कंट्रोल था हर चीज पे. मीडिया के थ्रू आप झूठ सच बोल के जो चार आपके चैनल्स हैं टेलीविजन के, उनको आपने कंट्रोल किया हुआ, उनकी ओनरशिप भी आपके पास है. अब वो सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटीज में रॉयट्स, जिस तरह यूनिवर्सिटीज में कैंप लगे, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया. लेकिन आप ये देखें कि वो सारे जो लोग जो लार्ज स्केल पर इसराइल के अगेंस्ट एक फीलिंग डेवलप हुई जो कि इस लेवल पे वेस्ट में डेवलप नहीं हुई थी, और वो जो सारे लोग थे वो सर, उनका अपना गोरा वो एक और तरह सोचना शुरू हो गया. मुझे उसी वक्त शक था, लेकिन इसको वो जो अवेयरनेस यहां पर आई, जो इसके पीछे फोर्स थी, जो वो मूव करने वाले थे, वो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इमिग्रेंट्स थे. क्योंकि देखिए जो दुनिया में हो रहा है वो जस्टिफाई तो आप नहीं कर सकते. अगर आप इंसान के बच्चे हैं, आपका एक दिल धड़कता है, तो आप ये नहीं मान सकते कि यार ये दुनिया में क्या हो रहा है. लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी दुनिया को छोटे से को बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, तो जो इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स था उसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स होने शुरू हुई. मुझे उसी वक्त फीलिंग थी कि नेक्स्ट स्टेप में अब इमिग्रेंट्स को डंडा आएगा और ये इमिग्रेंट्स को यहां से निकालेंगे और फ्यूचर इमिग्रेंट्स बंद करेंगे, बिकॉज जो इन्होंने एयर टाइट सिस्टम बनाया हुआ था वो टूट रहा. सो एक तो ये वाली डायमेंशन है इमिग्रेंट्स के हवाले से. दूसरा इशू यह है कि इमिग्रेंट की जरूरत क्यों पड़ती थी. इमिग्रेंट की जरूरत पड़ती है सोसाइटी में वो काम करने के लिए जो कि गोरा खुद नहीं करना चाहता, और गोरे की बड़ी ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है. सो आपने कल परसों इलोन मस्क के मैं एक वो देख रहा था, उसने कुछ शेयर किया हुआ था.
यार बंदा तो कम दे, लोग हमें उन्होंने नापसंद कर देने. आप इमेजिन करें कि वो बंदा तो काम कर.
हाँ जी, लेकिन उसने दुनिया का एक नक्शा शेयर कर रहा था, और उस दुनिया के नक्शे पे वो ममालिक थे जहां पर इंसान रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, और वो मतलब उनका पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव है. सो अफ्रीका था, उसमें पाकिस्तान था, उसमें इंडिया था, उसमें बहुत आपके मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज थे, उसमें इसराइल था. ठीक है जी. लेकिन आपका जितना वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, कनाडा, यूएस, जापान, ये सारे रेड थे बिकॉज ये यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, चाइना नेगेटिव है. तो ये दुनिया एक अजीब डायरेक्शन में जा रही थी. तो चूंकि यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है तो इसलिए इनको हमेशा से जरूरत रही है कि जी अब काम किसने करना है यहां पे. सो इमिग्रेंट्स वर काइंड ऑफ वेलकम एंड इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स मंगाए. अब आप देखिए एक टेक्नोलॉजी, मैंने कहा ना जी सबसे फिर आखिर में चीज है टेक्नोलॉजी. अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने वो इलोन मस्क का वो देखा है, पता नहीं जो उसने रोबोट डेवलप कर रहे हैं. दुनिया में दो कंपनीज हैं जो कि बेसिकली रोबोटिक
उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, मंकी पर एक्सपेरिमेंट भी किया.
हाँ जी, एक बॉस्टन डायनामिक्स वाले हैं जो वो पीला थे आपने देखा, उनका कुत्ता सा भी भाग रहा होता है और उनका वो रोबोट बड़ी समर सॉर्टिंग और ये वो मारता है. और एक ये बना रहा है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला बना रही है ओलंपस के नाम से. ओलंपस जो है बड़ा बड़ा डिफरेंट किस्म का रोबोट है और वो बच्चे की तरह सीखता है, लेकिन लाइक वो प्री प्रोग्राम नहीं है, बस आ जाएगा आपके पास और वो सीखना शुरू कर देगा. लेकिन उसका सीखने का रेट एक्सपोनेंशियल एंड अमेजिंग प्रोडक्ट. अच्छा, अब इलॉन मस्क से जब मैं वो देख रहा था उसका इंटरव्यू से तीन चार पांच महीने पहले जब इसने ओलंपस टू इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तो उसने कहा कि जी लोगों ने कहा कि जी इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि ये लोग कैसे अफोर्ड कैसे करेंगे घर घर में. उसने कहा जी इसकी मैं मार्केटिंग यूं कर रहा हूं कि दिस विल बी मेड अवेलेबल टू पीपल फॉर $40 अ डे, जिसमें 16 आवर्स ये काम किया करेगी मशीन. ठीक है जी. और ये इंसान की कोई भी एक्टिविटी हमसे बहुत बेहतर करेगी, ना वो थकती है, ना वो अकती है, ना उसने सोना है, ना उसने बाथरूम जाना है उसको, ना उसकी स्ट्रेंथ कम होती है उसकी. उसने कहा जी 6 घंटे जो 24 में 16 ये करेगी और 8 घंटे ये चार्ज पे लगा रहेगा और फिर फुल चार्ज हो जाएगा और 16 घंटे काम करेगा. नाउ फॉर $40 a day 16 घंटे काम. ठीक है जी. तो ये हाँ जी सॉरी ओलंपस में कह रहा था ऑप्टिमस. ठीक है जी. 16 घंटे अ डे काम करेगा $40 पे. तो आप ये देखें लेबर कॉस्ट आपकी कहां पे जाके गिरती है. लेबर कॉस्ट आपकी पड़ती है मैक्स $2.5 to $3 पे.
सो दे डोंट नीड एनी मैन पावर फ्रॉम द अदर कंट्री.
यू डोंट नीड एनी मैन पावर, यू डोंट नीड एन इमिग्रेंट टू कम एंड वर्क हियर, राइट. दिस मशीन, और आप मुझे बताएं इंसान इसके साथ कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त जो छोटे से छोटा कंस्ट्रक्शन का काम है वो वहां पे लोग $40 ब्रिक लेयर आपका मतलब $40 $50 एक घंटे से नीचे काम नहीं करता. जब आप लेबर रेट अब अगले 10 साल में 12 साल में ड्रॉप हो जाएगा,
बल्कि आप दिखा सकते हैं इसमें जो टीच करें जिस तरह से आप एक्सरसाइज टीच करेंगे दिस ऑप्टिमस डज एग्जैक्टली द सेम वे. बड़े अच्छे तरीके से सर आपने कंक्लूड किया कि अब इंसानों की जरूरत कम है. जरूरत क्या है तो इमिग्रेशन के हवाले से आपने सर बात की कि जब दुनिया में जबर और ज्यादती हुई, और अभी आपने बड़े बड़े मैं हर शख्स को कहती हूं कि प्लीज इस चीज को अपने पल्ले बांध ले. ये जो बाहर बैठ के आप जमहूरियत का रोना रोते हैं ना, और ये जो आपने 4-6 बंदे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में छोड़े हैं, बड़ी जमहूरियत है यहाँ, कख दी भी जमहूरियत नहीं है. इस वक्त जो कुछ गजा में हो रहा है रिस्पॉन्सिबल नॉर्थ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है. जो कुछ आज लेबनान में हो रहा है कौन प्रोवाइड कर रहा है इन लोगों को. मैं मानती हूं इनके पीछे काम करने वाले कोई और जहन है, मगर वो लोग भी वो थे जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने नोबेल प्राइजेस लिए, जिन्होंने काम किया, दे डिड अपनी आइडेंटिटी को संभालते हुए दे प्रूव्ड देमसेल्फ. मगर
मैं अप्रिशिएट करता हूं. देखिए अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो लोग इस पावर ऑफ स्ट्रेंथ पे ना होते तो आपने अभी मुझे कहा ना कि छुपते करते थे दुनिया में.
सर ये बिल्कुल आप देखिए ये
इसमें क्या हो रहा था. दे सेड नेवर अगेन.
मरानोज हुआ करते होते थे, ये छुपते थे, नाम नहीं रखते थे, छुप के इबादत करते थे. साइप्रस में मुसलमानों के साथ भी ये दौर गुजरा और यहूदियों के साथ भी ये दौर गुजरा. और फिर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर आ जाते हैं 19 सेंचुरी में, तो आप इमेजिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये वो दौर था जिसमें जितने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे जर्मनी में, मोस्टली दीज वर द ज्यूइश पीपल. आज ही वो होलोकास्ट का जिक्र करते हैं और ये मैस ग्रेव्स का जिक्र करते हैं. यही मैस ग्रेव्स आज बन रही हैं गजा में, यही मैस ग्रेव्स आज बन रही हैं लेबनान के बीच में, मगर मजाल नहीं किसी के कोई आदमी इसके ऊपर बोल चला.
और आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ एक दूसरे को जला रहे हैं. आप एक दूसरे को लिंच कर रहे हैं. तालीम से, अकल से आपका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है. आपको जो शख्स कोई अकल की बात करने की कोशिश करेगा, आप उसको सबसे पहले जूता मारना शुरू करेंगे. और फिर आप कहते हैं कि जी दुनिया अब बड़ी, अभी हमारी कोई इज्जत होनी चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया बढ़ेगी. यार प्लीज, जो
मैं तो आज बस यही कहती हूँ, आज वो जो तूफान आ रहा है सर्दी, आज न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की तरफ कोई फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में आ रहा है और कहते हैं बड़ा ही शदीद तूफान है, सारी दुनिया के पॉलिटिशियन इकट्ठे हुए हुए ने, और दे हैव डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर. मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है वो ये कि शायद इन मुल्कों के बीच में, इवन कनाडा में रहने वाले लोग भी कहते हैं वो यहाँ जी बड़ी शख्सी आजादी है, ह्यूमन राइट्स बड़े हैं, ये तो जिद नाल बीतती है उन्होंने पूछो.
नहीं नहीं, वो तो देखे ना, आप भैंस की तरह हैं बस. आपका काम है अपने सुबह अपने. वो एक बड़ी मजे की फिल्म है, माय फेवरेट मूवी, और आपके व्यूअर्स को मैं सबको और आपको भी सजेस्ट करूंगा अगर वक्त मिले किसी ऐसा टाइम पे जिसमें फिर आपने इधर, वो कुछ फिल्में चलते फिरते देखने की नहीं होती, वो कॉफी का मग्गा लेके बैठ जाए और देखें. एंथनी हॉपकिंस की एक फिल्म है, 1999 में बनी थी, काफी पुरानी फिल्म है बट वेरी लिटिल नोन. उसका नाम है इंस्टिंक्ट, एंथनी हॉपकिंस 1999 इंस्टिंक्ट. वॉच दैट मूवी और एक कॉफी का कप लेके बैठ जाएं, आप तीन दिन उसके बाद उस पर फिल्म के बारे में सोचते रहेंगे. ठीक है जी, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता.
बहुत शुक्रिया अशर अजीम साहब, जब आपने इतनी बातें की हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर एवरेज एजुकेशन की बात करें तो वहां जो शख्स दस्तखत भी करता है उसको तालीम याफ्ता कंसिडर किया जाता है, मगर हमारे मजहबी लीडर्स ने, आप समझ लीजिएगा चाहे वो कश्मीर से लेके जहां तक भी आप जिक्र कर लें, उन्होंने एक्सप्लॉइट ही किया है. एक और मजहबी लीडर थे जिनकी डेथ हुई है, 5 करोड़ शायद उनके अकाउंट में थे, बच्चे भी लड़ लड़ के 5 करोड़ के ऊपर मर गए. मेरा सर आपसे सवाल यहां पे ये है कि पाकिस्तान में क्या वजह है कि जो बाज इदारे हैं वहां पर लोगों को तालीम से भी दूर रखा जा रहा है, लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है विच इज टेकिंग पीपल टूवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन. और इसके बाद मेरा अगला सवाल है, इसी को आप जवाब देते हुए कंक्लूड कर लीजिएगा. आपने सीएसएस का इम्तहान भी दिया, आपने बड़ी आला पोजीशंस पे भी रहे, फौज का जिक्र कर लें तो बाकायदा भर्ती करने का एक निजाम होता है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा जिस अपर लेवल पे आईक्यू लेवल हो उन लोगों को हायर ना करें, आपने गधे हायर करने हैं जिनका आईक्यू लो हो ताकि वो सिर्फ आपकी कमांड के ऊपर चले. दे शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट एवर एंड एवर एंड नेवर.
एसएसबी में ये बात सच है. गधे तो मैं नहीं कहूंगा, देखिए वो एक एवरेज आईक्यू हर काम के लिए एक देखे ना, आप कनाडा में भी ओवर क्वालिफाइड बेसिस पे किसी को नहीं रखते, क्योंकि आप अगर किसी ऐसे आदमी को रखेंगे जो उस पोजीशन के लिए ओवर क्वालिफाइड होगा तो वो फिर वहां से छोड़
वो यस कहना बंद कर दे.
हाँ जी, और वो वहां से छोड़ के भी चला जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कोशिश ये करती हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बंदा लें. सो यस, आई बिलीव कि ओवर 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 इंटेलिजेंस हमेशा से एक क्राइटेरिया था, एफओस के लिए नहीं था लेकिन मेरा ख्याल है कि फौज में था कि ओवर ओवर इंटेलिजेंस पे आपको नहीं लेते थे, उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है वाकई. और वो प्रॉब्लम ये होती है कि जी आई एम नॉट सेइंग देयर डफर्स, देयर आर सम वेरी स्मार्ट पीपल देयर टू, बट जो इंटेलिजेंट आदमी होता है ना जी, वो
क्वेश्चन
कह सकते हैं कि सोच नहीं तू, उसकी मजबूरी है, उसका खोखा चलेगा, वो सोचेगा, ठीक है ना जी, वो आपकी बात बगैर क्वेश्चन किए एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो आपसे उस वक्त सवाल ना करे, घबरा जाए कल्चर वो, या इतना स्मार्ट हो के कहे यार मुझे समझ आ गई है लेकिन मैं सवाल नहीं पूछता, लेकिन वो उसके जहन में वो सवाल चल रहा होगा, वो आपकी बात को सच एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। सो एंड ऑफ कोर्स दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। आप ये सोचे ना कि जी अब जंग लड़ी हुई है, गोलियां चल रही हैं, फलाने आप एक बंदे को कहते हो तू इधर से जा, वो सोच ही पड़ जाता है कि अच्छा यार मैं इधर से जाऊं तो ऐसे बेहतर होगा कि मैं इधर से चला जाऊं, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों के साथ आप जंगे नहीं लड़ सकते। ऐसे लोगों के साथ आप एटम बम बनाते, ऐसे लोगों से आप टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ऐसे लोगों से आप मैथमेटिक्स सीखते हैं, ऐसे लोगों को आप फिजिक्स में डालते हैं। सो ये वो जहन की, बट मतलब मैं फर्ज करें मेरी पावर होती ना पाकिस्तान में, तो मैं सबसे पहले सबको कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस में डालता। Having said everything that
सारा कुछ डूब जाना थी। ओ देखे नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने वो क्रिकेट की टीम गई तो उसको काकूल ले गए, अच्छी भली टीम जीत के आया करती थी, आपको पता ही होगा जब वो वर्ल्ड मैच खेलने आए ना तो मोहसिन नकवी को ले गए उनको काकूल, वो टीम ही हार गई।
देखिए इसराइल की जो इस वक्त एक बहुत बड़ी,
एवरीबडी फाइट्स फॉर द कंट्री,
वो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, नहीं इट्स अ मच बिगर थिंग देन दिस, हम नहीं समझते उसे। देखिए फौज की जब आप बैरक में जाके रहते हैं ना, तो वहां पे मोहसिन नकवी का भी बेटा होगा, और जो थर से वो बच्चा आया होगा जिसने आज तक जूता उसके पांव पे नहीं था, वो सडनली कोर्समेट हो जाते हैं। वो एक रंग के कपड़े, एक तरह के बूट, एक तरह की बंदूक, एक तरह की बात, एक तरह की एजुकेशन, एक तरह का खाना, एक मेज पे, इट इज द फर्स्ट थिंग दैट
क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली से भी तमाम की तमाम उनकी रेस के लोग दे हैव टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी।
टर्की में इट्स कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग, it's about bringing that discipline in a people, in a nation. It would save the country from a lot of things, like usko ajeeb galat information di ja rahi hai, usko duniya ka exposure hi nahi hai, aap us 2 saal ki compulsory military service mein logon ko koi si minimum education ke liye aayenge, to agar farz kare aap ye mulk mein bana dete hain ki ye 18 saal ka jo bachcha hoga usne 18 se 20 saal tak फौज को, एयरफोर्स को, किसी भी चीज को सर्व करना है, और उसके बैकग्राउंड के हिसाब से जो उसकी एजुकेशन है हम उसको यहां पे लेके आएंगे, जैसे इसराइल में, टर्की में, जहां भी, ठीक है, और ये मिनिमम इतने साल रहेगा। उसमें से बहुत से लोग होंगे जिन बेचारों ने आज तक बिस्तर में नहीं सोए, जो बेचारे कूड़े से चीजें उठा उठा के लाते रहे, फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल हैव अ ग्रुप टू बिलोंग टू। सो आपने अगर सोसाइटी में, इस वक्त तो आपकी सोसाइटी बटी हुई है ना, चौधरी में मैं तो ये आपने कितनी दफा देखा है कि रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली बैठी खाना खा रही है और वो जो उनकी घर की मुलाजिम है छोटी सी, उसने वो बच्चा पकड़ के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई।
सैड है सर, वेरी सैड, इट्स वेरी सैड।
फौज इज द ग्रेट इक्वलाइजर, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट अबाउट फाइटिंग।
अच्छा चलिए चलिए, आपने बड़ी प्यारी बात की, और सर मैं, मेरा दिल जीत लिया आपने ये बात कह के कि फौज की क्या बात है कि फौज में एक आदमी आता है और वो सारी जिंदगी फौज उसको पेंशन देती है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, कैंसर हो गया है, 28 लाख की दवाई है तो 28 लाख की दवाई मंगवा के देगी, मुल्क के पास पैसे हो ना हो, दिस इज हाउ द आर्मी, इट्स अ डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन। बट क्या बात है कि वो तरक्की करता 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 जनरल के लेवल पे जाता है, और जनरल होने के बाद जब रिटायर होता है तो मोस्ट ऑफ देम दे डोंट वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री विच कवर्स देम थ्रू आउट देयर लाइफ एंड पेज देम ऑल द फैसिलिटीज, दे टेक देयर पेंशन, दे लिव अब्रॉड, वॉट इज द रीजन?
देखिए आई थिंक इट्स नॉट लिमिटेड टू आर्मी ओनली। देखिए पहले दौर में ब्यूरोक्रेट का बच्चा ब्यूरोक्रेट बनता था, हमारे ब्यूरोक्रेसी वाले चाहते थे कि यार ओके मेरा बच्चा भी डिप्टी कमिश्नर बने, ये भी सीएसएस करे, वो
नहीं, वो आसिफ मलिक साहब के अब्बा जी भी जनरल थे, उनका जनरल का बेटा जनरल ही बना।
अच्छा जी, वो तो चले, तो वो उस दौर में, देखिए ना उसने किस दौर में फौज ज्वाइन की होगी, तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि एक जमाना था जब جب سول سروسز میں، جب فوج میں، جب آپ کی مڈل کلاس میں ڈاکٹر چاہتا تھا میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر چاہتا تھا میرا بچہ انجینئر بنے گا، آپ اس ملک میں انویسٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی. آپ جب اپنی نئی جنریشن کو اس پروفیشن میں ڈالتے ہیں جس میں آپ خود ہیں، تو آپ اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں. یو ہیو یور فیوچر ٹائڈ ود دیٹ کنٹری، یو سی اے فیوچر فار دیٹ کنٹری، تو آپ اپنا بچے کو وہاں پہ رکھیں. اچھا، اب یہ پچھلے 30-40 سال سے ہونا شروع ہوا ہے، اینڈ اٹس ناٹ پیکیولر ٹو آرمی. آپ مجھے بتائیے، کسی بیوروکریٹ کا بچہ بیوروکریٹ بن رہا ہے آج کل؟ نہیں. وہ اپنا جیسے ہائی اسکول یا اپنا کالج ختم کریں گے، دے آل وانٹ ٹو گو ٹو امیرکن یونیورسٹیز، کینیڈین یونیورسٹیز، اینی ادر پارٹ آف دا ورلڈ، دے لیو. آپ کا انجینئرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کا جو سکسیسفل آدمی ہے، آپ کا جو سکسیسفل بزنس مین ہے، جو چاہے جرنیل ہے، اب آپ کسی بھی فیلڈ پہ لے جائیں، پاکستان میں جو